زیدان بھائی آپ کا کیا خیال ہے, اس کام کو جاری رکھنا چاہیے؟
نہیں بس کچھ تصویریں لے لیں.
یہ لوگ پیٹرولنگ کرتے ہیں اور کبھی تین چار دن بعد بھی, لہٰذا ہائی کمانڈ کو اطلاع دینی ہوگی کہ اگلی پیٹرولنگ اگلے ماہ کی تقریباً 2 سے 8 تاریخ کے درمیان ہوگی.
ٹھیک ہے, یہ آپریشن بڑا آسان ہوگا.
اللہ نے چاہا تو یہ آپریشن بڑی کامیابی سے انجام پائے گا.
ہم جس آپریشن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپریشن اپنی نوعیت کے تمام آپریشن سے منفرد ہوگا, کیونکہ ہمیں سہیونیا کے ایک بڑے قافلے کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ممکن ہے کہ اس قافلے میں 100 سے زیادہ سہیونی آفیسرز اور فوجی موجود ہوں. اس کی انفرادیت کی ایک وجہ اس آپریشن کی لوکیشن کی مشکلات ہوں گی, کیونکہ یہ آپریشن دیرماز اور خردری روڈ پہ ہے, جس کا مطلب یہ ہوا بالکل بارڈر کے قریب. مجھے یقین ہے اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا, یہ راستہ شیف اور غزیلہ پر بالکل اوپن ہے, مطلب یہ کہ وہاں پر اسرائیلیوں کی نظروں سے چونٹی کا بھی بچ کر گزر جانا ممکن نہیں.
سچ تو یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
اللہ کی مدد سے آپ وہاں پہنچ جائیں گے. پہلا گروپ نہر کے سمت بڑھے گا جبکہ دوسرا گروپ شیف اور ارون کی مین روڈ سے انٹر ہوگا. ہم ان کے ساتھ وہ تمام ایمونیشن بھی بھیج رہے ہیں جو آپریشن کے لیے ضروری ہے.
حاجی محسن کے ساتھ چمٹا وہ جوان کون ہے جو ہمیشہ اسی کے کنارے بیٹھتا ہے؟
وہ مصطفیٰ ہے, آبزرور کمانڈر, جس نے سروے کیا تھا. وہ بھی آپریشن میں ہمارے ساتھ شریک ہوگا.
کیا یہ لوجیکل ہوگا کہ 2 ماہ مسلسل سروے کرنے کے بعد بھی اس میں شرکت کریں؟ کیا اسے آرام نہیں کرنا چاہیے؟
پہلا گروپ نہر کے ساتھ ساتھ اس سمت چلتا رہے گا اور اس کے انچارج حاجی عباس ہوں گے, اور یہ جگہ ہماری میٹنگ پوائنٹ ہوگی. اور یومر میں ہماری اسپیشل فورس کا ایک آدمی آپ کی ایک خالی گھر تک رہنمائی بھی کر دے گا. آپ کا گروپ وہاں پہنچنے کے بعد حاجی مصطفیٰ کی کمانڈ میں ہوگا. حاجی مصطفیٰ ہمارا خاص آدمی ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی ایک معزز شخص ہوگا. میرے بھائیو, سب سے اہم بات, کیا کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟
حاجی صاحب, اگر کوئی گروپ نظروں میں آ جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟
پورا علاقہ ہمارے توپخانے کی زد میں ہے, جن میں عزیرہ, قلعہ شکیف, توہرہ, علی طاہر, دپشا وغیرہ شامل ہیں. کچھ اور پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کے بابرکت نام سے 6 گھنٹے بعد آپ کو نکلنا ہوگا. والسلام.
कैसा चल रहा है मर्दान?
बस खत्म होने वाला है।
अल्लाह आपको खुश रखे। हवा की जगह छोड़ना मत भूलना।
इत्मीनान रखें, मैंने इंतजाम कर दिया है।
सर आंखों पर, आपकी थकावट दूर करने के लिए बेहतरीन चाय तैयार है।
बहुत शुक्रिया।
आह मेरी जान, बेटी ये गोली और दे दो, इस दर्द ने तो मार ही डाला बेटी।
गोलियां खत्म हो गई हैं, डिब्बा खाली है।
अल्लाह तुम्हारे शोहर को खुश रखे। कल मैंने उसे कहा था एक और पैकेट ला दे,
उन्होंने कोशिश की, उन्हें जाने की इजाज़त ही ना मिल सकी।
अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। मैंने कितनी बार कहा कि जड़ी बूटी को गर्म करके पानी में डालकर इस्तेमाल कर लिया करो।
मैंने कहा था, मुझे मालूम है, लेकिन क्या करूं, लैला मेरी सुनती ही नहीं।
क्यों मेरी जान, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ को कुछ आराम
हो? क्यों नहीं, लेकिन आपकी बातें समझ से बाहर हैं। अगर ये फायदेमंद होता तो फिर कोई भी कैंसर की अज़ियत ना सहता।
पहले जमाने में लोग इसी से इलाज करते थे।
उम्मे सईद बस भी करें।
लैला, खुदा तुम्हारा भला करे, उम्मे सईद की बात पर अमल करो। अगर मुफीद हुआ तो मुझे कुछ आराम तो मिलेगा, और अगर ना हुआ तो भी हमारा क्या नुकसान होगा।
ठीक है, आपको कुछ चाहिए? क्योंकि मुझे जाना है।
नहीं मेरी जान, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बस देर मत करना।
इंशाल्लाह।
परेशान मत हो, तुम देखोगी कि पहले ही कप में फर्क पड़ेगा।
मुझे भी उम्मीद है, क्योंकि अब और दर्द सहा नहीं जाता।
बहुत तकलीफ सही जब से उसके बाजू का वो हादसा पेश आया, फिर उस पर अम्मा की दवाइयों का इजाफी बोझ भी है। वो तुमसे नाराज है ना? अल्लाह ना करे, इससे पहले कि वो उसकी सास हो, उसकी खाला भी है, जिसने उसके बाप की वफात की बात उन्हें पाला है।
और तुम्हारे बारे में क्या?
मैं
हादसे के बाद उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत में कोई तब्दीली तो नहीं आई?
तुम कहना क्या चाहती हो? हसाम मेरी रूह जान, तो सब कुछ है।
कैसी गुजर रही है लैला जी?
मेहरबानी करके अपना रास्ता पकड़ो।
अफसोस, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, ये कैसा रवैया है?
मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, फिर तुम क्या चाहते हो?
तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये क्या बात हुई कि तुम अपनी जिंदगी एक टुंडे के साथ बर्बाद कर दो?
ये हाथ कटा इंसान मेरा शौहर है, मैं उसे चाहती हूँ।
सरासर झूठ।
तुम चाहते हो तो सुनो, मुझे और मेरे शौहर को मेरे हाल पर छोड़ दो।
ये तुम्हारा ख्वाब है, उसकी भलाई चाहती हो तो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो।
ये नामुमकिन है।
अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर उससे पूछ लेना कि कल मैंने उसके साथ क्या किया था, उसकी हालत भीगी बिल्ली की तरह थी। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। अबू मोहम्मद, इतनी देर क्यों कर दी?
बाजार में काफी टाइम लग गया, गाँव वालों के लिए खरीदारी कर रहा था। इसराइलियों ने चेक पोस्ट पर कुछ दिनों से काफी सख्ती कर रखी है और किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहे, इसीलिए गांव में जिस किसी को किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है वो मुझे से ही कहता है।
जब तक गांव को पानी पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसराइली तुम्हारे अलावा किसी को आने जाने की इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं।
बस हाजी, अब मैं थक चुका हूँ।
कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हारी मदद करे,
ये मेरी जरूरत है। क्या ये तो तैयार हो गई?
जी हाँ, और अब पहले से बेहतर भी है।
हाजी मैं तुम्हारा शुक्र गुजार हूँ। कितने पैसे हुए?
इसे रहने दो, कभी तुम्हारे तो कभी मेरे खाते में, बाद में देख लेंगे।
अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे।
یہ دنیاوی حسابات بے فائدہ ہیں ابو محمد،
یہ صرف اچھے لوگوں کے خیالات ہیں۔ جانے سے پہلے اور کیا خدمت کر سکتا ہوں؟
حاجی حسین کو میرا سلام کہنا۔
اچھا، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لگتا ہے آپ یہاں نئے آئے ہیں۔ میں ابو محمد ہوں، میرا آنا جانا یہاں لگا رہتا ہے، نہ مجھے کوئی روکتا ہے اور نہ ہی تفتیش کرتا ہے۔
بکواس بند کرو جاہل۔
سر، یہ ابو محمد ہے، ہم سب اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔
پانی کی ٹینکی بھی چیک کرو۔
بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. حاجی خلیل آپ کو سلام کہہ رہا تھا اور کہا کہ پانی کی پوری ٹینکی آپ کی ہے.
میں آپ اور حاجی خلیل کا ممنون ہوں. کچھ دیر اس ٹینکی کو یہیں چھوڑنا پڑے گا. میری بیوی کا بھائی آ رہا ہے, وہ خالی کر دے گا.
سر آنکھوں پر, میں بعد میں لے جاؤں گا.
نہیں بھائی, ایک کپ چائے پی کر جاؤ.
کچھ امانتیں ہیں, پہنچانا بہت ضروری ہے. السلام علیکم.
چلو تو پھر, اللہ حافظ.
خدا, یہ کتنا اچھا ثابت ہو رہا ہے.
تھوڑا برداشت کریں, ہو سکتا ہے کہ ام سعید کی بات سچ ہو اور افاقہ ہو جائے.
انشاءاللہ میری بیٹی,
انشاءاللہ بہت اچھی ہوں.
خدا تمہیں سلامت رکھے. کیا بات ہے لیلا, تم کچھ پریشان سی ہو. बात क्या है?
नहीं कोई बात नहीं।
लैला मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, पिछले एक माह से मैं देख रही हूँ तुम कुछ परेशान सी रहती हो। आखिर बात क्या है? मैं समझ सकती हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो, कुछ हद से ज्यादा तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ, तुम और तुम्हारे शौहर से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते।
अल्लाह ना करे, ये आप क्या कह रही हैं? मैं किसी और बात पर परेशान हूँ।
तो फिर मुझे बता क्यों नहीं देती?
ये सफर से ताल्लुक रखता है, मैं आपको बाद में बता दूंगी।
चलो मैं इसरार नहीं करती क्योंकि जानती हूँ तुम बहुत गहरी हो, मुझे पता है कि कुछ भी हो लेकिन मेरे पूछने से तुम्हारे इरादे में कोई तब्दीली नहीं आने वाली।
ये खासियत मुझ में कहाँ से आई?
तुम्हारे अपने बाप से, अल्लाह उस पर रहम करे। प्यारी बेटी पारी वक्त में जाओ और दरख्त से कीनू तोड़ लो इससे पहले कि वो खराब होकर गिर पड़े, और आते वक्त अपने दादा के घर को भी एक नजर देख लेना।
इंशाल्लाह
अल्लाह तुमसे राजी हो मेरी जान, तुम्हें बहुत जहमत दे रही हूँ।
रजा भाई, रजा भाई क्या बात है? कोई तकलीफ हो रही है?
क्यों, कोई मसला है क्या?
नहीं तो, लेकिन तुम इस तरह चुपचाप बैठने वाले में से तो नहीं हो। पूरे रास्ते मैं तुम्हारे लतीफों पर हंसता रहा हूँ।
अच्छा तो तुम लतीफे सुनना चाहते हो?
लतीफे मत सुनाओ यार, बस ये बताओ क्या सोच रहे हो?
कुछ नहीं यार।
नहीं कुछ तो है।
कुछ ऐसे ही दिन थे कि मेरे वालिद जमीन में काश्त कर रहे थे और इसराइली पूरे इलाके पर गोलियों की बौछार कर रहे थे इन जगहों को निशाना बनाने के लिए।
फिर क्या हुआ?
दबशा में वो देख रहे थे कि एक किसान अपनी खेती बाड़ी में मसरूफ है और उसके बावजूद भी उन्होंने उसे निशाना बनाया और मेरे वाले जमीन पर गिर पड़े।
अल्लाह अकबर, वहाँ कोई नहीं था क्या?
वो अकेले थे, उनका खून बहता रहा बहता रहा। जब हम उनकी तलाश में निकले तो मेरे वाले शहीद हो चुके थे और जमीन उनके खून से रंगीन थी और उनकी मिट्टी में उसी जमीन की मिट्टी थी।
बहन डरो मत, हम हिजबुल्ला वाले हैं। अगर आपको बुरा लगा हो तो हम माजरत ख्वाह हैं।
मुझे पता तो चले आखिर तुम्हारी इस रोज रोज की बदतमीजी की वजह क्या है।
बेवकूफ, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता?
नहीं मुझे नहीं पता, तुम चाहते क्या हो?
अगर अब भी नहीं जानते तो जाओ और जाकर अपनी बीवी से पूछो। सुनो, लैला जैसी को मैंने पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। मैं उसे इतना तंग करूंगा कि उसका शोहर उसे तलाक देकर ही रहेगा।
ठीक है, लेकिन इस सब का क्या फायदा जबकि इस लड़की ने तो अपने शोहर को जलील होते हुए देखा ही नहीं।
बकवास मत करो, मैं उसे अपना करके ही रहूंगा।
और अगर ना मानी तो?
वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो बस फ्लर्ट कर रहा हूँ। अगर उसने नखरे दिखाए तो उसके सामने ही उसके शोहर का सर फोड़ दूंगा और उसे जबरदस्ती उठा लूंगा।
हाजी, क्या तुम इन्हें अच्छी तरह से जानते हो?
100%। ये लैला है खाला जहरा की बेटी। इसकी शादी अपने कजन हुसैन के साथ हुई है जो वर्कशॉप में काम करता है। इसकी माँ कैंसर की वजह से बीमार है और उसकी हालत भी अच्छी नहीं है।
अच्छा, ये बताओ, क्या कोई इनका रिश्तेदार आलयकार तो नहीं है?
नहीं, इनका कोई रिश्तेदार आलयकार नहीं। मेरी बहन, आजादी के जायके को वही महसूस कर सकते हैं जो हुर्रियत पसंद हो।
ठीक है, लेकिन दुख का भी एक जायका है जिसे वो जानता है जिसमें डूब चुका हो।
आपके लहजे से भी लगता है कि आपकी फैमिली इसराइलियों के मजालिम से परेशान है।
हमारे लिए बस यही काफी है कि हम एक बड़े जेल में रहते हैं जहां दुखों और गमों का बसेरा है। हमारे गांव में इन जवानों को दुख सहना पड़ता है जो लहद आर्मी का हिस्सा नहीं बनना चाहते।
हम इसीलिए तो यहां आए हैं।
अच्छा, मुझे कुछ जल्दी है।
नहीं,
बहुत देर हो चुकी, मुझे घर जाना है।
आराम से बहन, अभी हमारी बातें खत्म नहीं हुई।
मेरा शोहर और माँ परेशान हो जाएंगे और मुमकिन है कि गांव वाले बातें करने लगे।
मुझे माफ करना, फैसला मेरा नहीं हाजी का है।
वो कहाँ है? मैं उनसे बात करूँगी।
बहन, खैरियत तो है? मुझसे क्या चाहती हैं आप?
क्या आप ये पसंद करेंगे कि ऐसा आपकी बहन के साथ किया जाए?
नहीं, बस जाने से पहले कुछ बातें जरूर सुन लें।
फरमाएं।
हम आप और आपके शौहर हसाम के बारे में सब कुछ ही जानते हैं। वो एक मैकेनिकल वर्कशॉप में काम करता है। इसी तरह आपकी बीमार माँ, हम उनके बारे में भी सब कुछ जानते हैं। बस अगर आप हमारी राजदार बने तो हम शुक्रगुजार होंगे। दूसरी सूरत में आप अपने आप को और अपनी फैमिली को मुसीबत में डालेंगी।
खुदा की पना, मैं इसे राजी रखूंगी।
हत्ता अपने शौहर और माँ से भी।
हत्ता शौहर और माँ से भी।
कसम खाइए।
खुदा की कसम, मैं आज के बारे में जुबान तक न खोलूंगी।
मैंने आपका यकीन किया, अब आप जा सकते हैं।
लीजिए खाला जान।
ये तो मेरी दवाई नहीं।
नहीं, ये आप ही की है, लेकिन कंपनी मुख्तलिफ है।
मेहरबानी से इसे वापस ले जाओ, पहली वाली ले आओ।
खाला जान, ये उसी जैसी है। फर्ज कीजिए कि आपने मुझे रोटी लेने भेजा हो, अब आपको इससे क्या मतलब कि किस तंदूर से लेकर आऊँ? बस रोटी अच्छी होनी चाहिए ना?
नहीं, बस अच्छी होनी चाहिए।
मतलब ये कि बस आप अल्लाह पर भरोसा रखिए।
ठीक है, बिस्मिल्लाह।
अल्लाह शफा दे आपको।
अल्लाह मदद करे। ये कितने में मिली हसाम?
पहले वाले की ही तरह, ये भी 2 लाख लीरा में।
मुझे माफ करना बेटा, मैं कुछ ज्यादा ही तुम लोगों पर बोझ बनी हुई हूँ।
प्लीज दोबारा ये मत कहिएगा।
मैंने परेशान भी तो बहुत किया है।
कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत देगा। मैंने आज मुनीर भाई को कनाडा खत लिखकर सारी सूरत हाल बता दी है।
लेकिन वो जवाब नहीं देगा।
नहीं, जवाब देगा। उसके सफर के लिए मैंने 2 मिलियन लीरा दिए थे। उसने मुझसे वादा किया था कि वो पहली ही फुर्सत में वापस कर देगा।
अल्लाह करे वो वादा वफा करे। ये बताओ हसाम, तुम अपना गुजारा कैसे कर रहे हो?
अल्लाह किसी को उसके हाल पे नहीं छोड़ता।
खबरदार, जो लहद वालों का आला कार बने।
नहीं, मुतमईन रहिए, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं
सकता। तुम पर वाजे कर दूं, शायद मैं किसी भी चीज को बर्दाश्त कर जाऊं, मगर खबरदार जो लहद के आला कार बने।
जी हाँ खाला, ये मेरा वादा है। जब वो मुझे टॉर्चर भी किया करते थे, मैंने तो तब भी ऐसा नहीं सोचा था। अब भला कैसे ये सोच सकता हूँ, जबकि उस वक्त आप लोग कुछ भी नहीं कर सके थे। और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद से कहा कि दुनिया में कोई चीज नहीं सवाए इसके कि इंसान अपने आप को पा ले।
मैं हजार बार मरना पसंद करूंगी, मगर इसराइली पैसों से इलाज हरगिज नहीं।
माँ कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र है।
तुमने इतनी देर क्यों कर दी?
कीनू उठाते उठाते वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। मैं थक गई हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना।
अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
सब ठीक है लैला? कोई मसला तो नहीं?
नहीं कुछ नहीं, बस थक सी गई हूँ।
तुम्हारी मुश्किल ये है, तुम झूठ बोल सकती हो और ना ही छुपा सकती हो। सच सच बताओ, किसी ने तंग तो नहीं किया?
नहीं।
फिर मसला क्या है? अब ये ना कहना कि कुछ भी नहीं।
आज जो खबर सुनी उसने कुछ परेशान किया।
क्या खबर सुनी है?
लहद आर्मी में कोई सामी नामी शख्स है जो आपको तंग कर रहा है।
तुम्हें किसने बताया?
गाँव वाले बात कर रहे थे, क्या ये सच है?
हाँ सच है, कुछ अरसा से तंग कर रहा है, लेकिन मैं इस मामले को अहमियत नहीं देता।
तंग कर रहा है से क्या मतलब है आपका?
उसने मुझे गाड़ी से उतार के मारा था। खुदा की कसम मैं उसे कत्ल कर देता अगर उसके और साथी ना होते।
नहीं खुदा के लिए ऐसा मत करना, पहले ही हम काफी मुश्किल में हैं।
लैला सच सच बताओ, क्या उस खबीस ने तुम्हें भी तंग किया था? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तंग किया था?
नहीं।
सच कह रही हो?
हाँ भाई, वरना मैं आपको जरूर बताती।
आज के बाद तुम घर से अकेली नहीं निकलोगी।
इंशाल्लाह। दवाई ने तो कोई असर नहीं दिखाया।
और असर कर भी नहीं सकती।
क्यों?
क्योंकि असल गोलियों के लिए पैसे पूरे नहीं थे, मैं कम मिलीग्राम के लिए आया हूँ।
मुझे 2-3 गोलियाँ देनी पड़ेंगी, ये तकलीफ नहीं देखी जाती।
हाँ जी, कब तक यहाँ रहना है?
अंधेरा फैलने से पहले हमारे